54 कहानी पदाधिकारी लेखिका सुषमा मुनिंद्र। कामकाजी स्त्री का नया चेहरा उकीर्ति कहानी है पदाधिकारी। आन बान शान से सजा रोबीला व्यक्तित्व, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है स्त्री होना और तीसरा पक्ष है उसका घर। इस तरह घर, दफ्तर और दफ्तर के उच्चाधिकारियों ने त्रिगुट में फंसी स्त्री किस तरह एक साथ कई मोर्चों पर डटी अपने स्त्री होने की ग्रंथि से छुटकारा पाने के लिए छटपटा रही है। कामकाजी स्त्री की भीतरी दुनिया से रूबरू कराती कहानी। आज यदि कोई पूछे आपके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी क्या रही, तो दोहा आचार्य का उत्तर होगा यही कि मेरे सामने हरदम अनिश्चय की स्थिति रहती होती है। अनिश्चय अब उसे डराते नहीं, चिड़चिड़ाहट फिर भी भर देते हैं। कितनी उमंग और उम्मीद थी अपने इस अच्छे पद को लेकर, सेल टैक्स ऑफिसर। अब लगता है इस पद की जो कृत्रिम प्रभा है उसके भीतर अंधेरे बहुत हैं। सीमित शोध से प्रारंभ हुआ कार्यकाल अच्छा रहा या औसत, अड़चन यह रही अपने तरीके से कुछ नहीं कर पाती है। बार बार यही प्रक्रिया, तबादला, नई जगह में व्यवस्थित होने की मशक्कत, विभागीय लोगों से तालमेल बनाने की कोशिश, वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में अधीनस्थ कर्मचारियों की गलत किस्म की कायिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, देख नजरें झुका लेने की असहायता। प्रत्येक नई जगह में नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे किन्हीं दबावों के कारण जब हताश होने लगती है, तभी एक सपना ठीक सामने होता है। एक दिन DC डिप्टी कमिश्नर बनेगी, अपने तरीके से काम कर ऐसी आदर्श स्थिति तैयार करेगी जब उस जगह से जाने के बाद भी लोग याद करेंगे वह अच्छी ऑफिसर थी। पर क्या सपने इतनी लंबी उम्र पाते हैं जब उन्हें पूरा होने का मौका मिले? इस प्रदेश के, इस जिले के, इस विक्रय कर कार्यालय में यह उसका तीसरा साल है। इस दफ्तर में महिलाओं का अवतरण मुश्किल से होता है, एक भी लेडी प्रैक्टिशनर नहीं है। तो जब विभाग को सूचना मिली STO दोहा आचार्य का आगमन हो रहा है, विभाग सक्रिय होने लगा कि एक सलोना चेहरा आसपास होगा, वरना काऊ वायर टाइप के कठोर चेहरे देखकर उबासी आती है। यद्यप दोहा आचार्य को देखकर विभाग कुछ निराश हुआ। शक्ल सूरत साधारण और त्वचा का रंग सांवला है, न हया की लाली न कमनीयता, कभी हंसती मुस्कुराती नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा है किस स्वभाव की है, क्या भाव रखती हैं। पृष्ठ 55। या जैसी है वैसी क्यों है, जैसे भी है चलेबल है, अंग्रेजी का हिंदी संस्करण इसे आत्मसात करो। उम्र क्या होगी, त्वचा से उम्र का पता ही नहीं चलता, पर बालों में हेयर कलर दिखाई देता है तो 40-45 से कम नहीं होगी। उम्र न देखो, यह देखो वर्षों बाद दफ्तर में इतर की महक सूंघने को मिली है। दफ्तरों का यही संस्कार है, अधिकारी कर्मचारी महिला है तो उसकी प्रशासनिक क्षमता, कार्यपद्धत, स्वविवेक से किए गए फैसलों पर ध्यान न दे, उसके वस्त्र चयन, त्वचा, बाल चाल, भंगिमाओं को लेकर विभागीय लोग दुबलाने लगते हैं। फिर भी कह सकते हैं दोहा आचार्य का पहला वर्ष अच्छा बीता, इतना अच्छा अब तक न बीता था। अच्छा यह हुआ संभागीय उपायुक्त मुकुट बिहारी का ध्यान कमनीयता जैसे जरूरी तत्व पर न जाकर दोहा की प्रशासनिक क्षमता पर गया, वे उसे समुचित मान महत्व देने लगे। दोहा उत्साह में आ गई, ऐसा उत्साहजनक वातावरण मिले तो अच्छी वसूली दिलाकर विक्रय कर विभाग को संपन्न कर देगी। मुकुट बिहारी उसे अक्सर मोबाइल चेकिंग, ट्रक इत्यादि चलित वाहनों का निरीक्षण और अनियमितता पाए जाने पर वाहन को हस्तसात किया जाता है में भेजते थे। दोहा पुरुषों के बीच बैठने में असहज महसूस न करे, इसलिए उन्होंने सहायक आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दे रखे थे। केशरवानी जी, मैं मानता हूँ आप मैडम के बॉस हैं, पर वे अकेली महिला हैं, उन्हें इंस्पेक्टरों के साथ पीछे बैठने में असुविधा होती होगी, उन्हें आगे बैठने दें। मैं मैडम की कार्य पद्धति की सराहना करता हूँ, उन्होंने वसूली का लक्ष्य प्राप्त किया है, राजस्व आय में वृद्धि हुई है। केशरवानी जी संताप से भर जाते, सर आपकी उम्र हो चली है तो आप राजस्व की वृद्धि देखें, हमें मैडम दिखाई देती हैं, अभी तो वे आगे बैठ लें, पर आप जब 8 माह बाद सेवानिवृत्त होंगे तब मैडम का हाल पूछूंगा कि मुकुट बिहारी के राज में जलवा दिखा लिया, अब धरा पर आ जाइए। और यही हुआ, मुकुट बिहारी के जाने और नए डीसी के आने पर विभाग का वातावरण इस कदर बिगड़ गया कि दोहा का उत्साह समूल गायब हो गया। वही आम सी समस्या, उससे निकटता बनाने की कोशिशें तेज कर दी गईं। हर कोई उसका रहनुमा बनने की फिक्र में अपनी निगाह बनानी में रखने की तैयारी करता हुआ डीसी चारण परंपरा के पोषक निकले। चाहने लगे अन्य अधिकारियों की तरह दोहा आचार्य भी अपना वक्त उनकी कृपाकांक्षी बनने में बिताए। दोहा ऐसा नहीं करती, डीसी चैम्बर में बुलाते वह न जाती, काम छोड़कर तो नहीं, कम से कम उन मांगों अथवा कारणों पर नहीं जो यह बताने के लिए होते। वह अधीनस्थ है, उसके चैम्बर में केस चल रहा था। डीसी ने फोन किया, कॉफ़ी के लिए शुगर क्यूब भेजिए और हाँ, कॉफ़ी पीने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। दोहा ने अपने चैम्बर के बाहर बैठे अर्दली को पैसे दिए और बाजार से शुगर क्यूब लाकर डीसी के चैम्बर में पहुँचा देने को कहा। फोन आया, आप सादर आमंत्रित हैं। कहाँ गया, व्यस्त हूँ। दोहा ने संकेत दिया, अनावश्यक दखल पसंद नहीं। साहब ने संकेत ग्रहण किया, फतह आसान नहीं। तब वे मुस्कुराए, दोहा आचार अधिकारी हैं पर उससे पहले महिला हैं, अदा दिखाएंगी ही, और यदि किसी किस्म का गुरूर है तो उपचार किया जाएगा। कॉफ़ी के स्वाद में रत केशरवानी ने साहब की मुस्कान का रहस्य जानना चाहा। सर आप खुश हैं, आपके आदेश को अनदेखा किया गया है। हूँ मैडम, कमांडिंग नेचर की जान पड़ती हैं। बाय द वे इनका मैरिटल स्टेटस क्या है? ASTO लॉल ने भेद भरी मुद्रा अपना ली। अविवाहित हैं, विवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो इन्हें सुश्री कहें, श्रीमती कहें, आचार्य जी कहें, क्या कहें? अब आप बताएं वे कितनी विचित्र हैं। सेल टैक्स कॉलोनी में आवंटित मकान में नहीं, किराए के मकान में रहती हैं कि दफ्तर के लोग उनका व्यक्तिगत न जान लें। व्यक्तिगत क्या जानने लायक नहीं है? पता नहीं, वैसे जनार्दन बाबू काफ़ी कुछ जानते हैं। बता रहे थे मैडम की पहली शादी टूट चुकी है। शादी टूटने के गम में हमारी मैडम कभी फांसी पर झूल गई थी, बचा ली गई पर फंदे का निशान गले में रह गया, जिसे छिपाने के लिए हरदम बंद गले के सलवार सूट पहनती हैं। अभी यह जो छठे छह मासे आता रहता है, दूसरा पति है। बाबू कौम ने इस दूसरे का नाम ठोकिया रख दिया है। इस रीजन में ठोकिया डाकू एक्टिव है, तो मैडम जो कुछ कमाती है उनका पति ठोकिया की तरह लूट ले जाता है। विभाग के दूषित वायुमंडल में ढेर अफवाहें समय समय पर प्रसारित होती रहती हैं। किसी को प्रमाण नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। गुप्तचरी और जानकारियां एकत्र करने में चूंकि जनार्दन बाबू को दक्षता प्राप्त है, अतः चारों ओर से इनकी पुकार होती रहती है। मैडम अकेली रहती हैं, इस तथ्य को डीसी की मेधा ने तत्काल प्रभाव से ग्रहण कर लिया। अकेली महिला आजमाया जाए। दोहा के सेल फोन पर डीसी का नंबर जब तब फ्लैश होने लगा। दोहा को अरुचि होती, उससे चाहे जब संपर्क न किया जाए, इसीलिए तो सरकारी मकान नहीं लिया, लैंडलाइन कनेक्शन नहीं लिया, मोबाइल नंबर कुछ जरूरी लोगों को वितरित करना पड़ा, वरना न करती। साहब की बातों का क्रम थमते न देख उसे कहना पड़ता, सर मैं डिस्टर्ब होती हूँ, अन्यथा न लें। मूर्ख महिला डीसी से महाभारत ठान रही है। मुझे बताया गया है आप मेरी शक्ल, मेरी आवाज़, मेरे आदेशों से डिस्टर्ब होती हैं, कुछ शासकीय जानकारी चाहिए इसलिए फ़ोन किया, वह मैं दफ्तर में दे दूंगी। विभाग दम साध कर देख रहा है, यह लड़ाई अंतिम रूप क्या धारण करती है। मिश्रित सा माहौल है। पृष्ठ 56। कुछ लोग दोहा की जानकारियां साहब तक पहुंचाकर उन्हें मुदित कर रहे हैं। कुछ लोग दोहा के योग क्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेकर उसकी समीपता पाने की तमन्ना संजो रहे हैं। कुछ लोग दया दिखा रहे हैं, एक अकेली औरत को इतना क्यों सताया जा रहा है। कुछ लोग दाद दे रहे हैं, लेडी वीर है, किसी से नहीं दबती। रात 8 का समय है, केशरवानी का फोन आया। रात का खाना बना रही दोहा क्षुब्ध हुई, लगता है मोबाइल चेकिंग पर जाना होगा। अब रात का क्या कार्यक्रम बन गया सर? क्षुब्धता में उसके मुंह से यही निकला, आप रुचि लें तो कार्यक्रम बनाया जाए। अर्थ इस तरह बदल दिए जाते हैं कि प्रयोजन कुछ और हो जाता है। मोबाइल चेकिंग गाड़ी भेज रहा हूँ। दोहा को रात की चेकिंग में जाना असुविधाजनक लगता है। पुरुषों के बीच अकेले होने का एहसास, साथ ही ट्रकों के ट्रक ड्राइवरों को देखकर नसों में दहशत उतर जाती है। उसने एक नज़र धोकर रखी सब्जी पर डाली तो आज का उपवास। जीप दोहा को लेकर के शर्वानी जी के घर पहुंची तो दोहा को आगे की सीट पर देख वे मुस्कुराए। मैडम, सर आप पीछे बैठ लें, मुझे सुविधा हो जाएगी। सुविधा देखती हैं या ड्यूटी करती हैं? ड्यूटी ही कर रही हूँ, पर पीछे बैठने में आपत्ति है, मैं आपका सीनियर हूँ। हाँ, पर मैं अकेली। महिला केशरवानी ने वाक्य पूरा किया, आप तो कहती हैं आपको महिला नहीं पदाधिकारी के रूप में देखा जाए, देखते हैं क्या? सुनकर ड्राइवर और पीछे बैठे चारों इंस्पेक्टर मुस्कुराए। कल विभाग में ये लोग पूरा प्रसंग कहेंगे। पीछे बैठिए, वक्त बर्बाद न किया जाए। मैडम आइए, आपके लिए काफी जगह बना दी है, एक इंस्पेक्टर ने पुकारा। अब कुछ कहना व्यर्थ होगा, उपहास की पात्र बनेगी या दया की या सहानुभूति की या चित्त रंजन की, वह पीछे बैठ गई। जीर्ण जर्जर सड़क, झोल झटकों का लाभ ले बगल का इंस्पेक्टर दोहा पर लदने की गुंजाइश बनाता जा रहा था, जबकि वह उसे ठीक से बैठने को नहीं कह सकती थी। वह कह सकता था ठीक से माने किस तरह? सड़क ठीक से क्या बैठने देती है? कष्ट यह कि ट्रक भी नहीं मिल रहे थे। ट्रक चालकों के पता नहीं क्या संपर्क सूत्र होते हैं, चेकिंग की खबर हो जाती है, ट्रक सुरक्षित जगहों पर खड़े कर दिए जाते हैं कि चेकिंग का कहर थमे तब आगे बढ़ें। रात भर की कड़ी मेहनत के बाद फली दाना, सुपारी, सोंठ आदि किराना आइटम से लदे 3 ट्रक पकड़े जा सके। अग्रिम करके रूप में 8 लाख रुपए जमा हुए। थकी उनेंदी दोहा सुबह 4 बजे घर पहुंची। इस विक्रय कर विभाग ने दिन का चैन, रातों की नींद छीन ली। वह बिस्तर में ढह गई। न जाने क्यों पर इस वक्त उसे अपने अध्यापक पथ निष्काम की याद हो आई, शायद इसीलिए कि इस वक्त वह खुद को बहुत अकेला पा रही थी। अच्छा लगता है यदि किसी के आस पास होने का एहसास बना रहे, होती रहें वे चेष्टाएँ, जब लगे जीवन के संवेदन स्पंदन बचे हुए हैं। जरूरत होती है कि किसी की ताप भरे स्पर्श की भीतर की बर्फ पिघलती रहे। निष्काम निर्दयी पति कितनी सरलता से कह देता था, तुम औरतें शादी और करियर एक साथ मैनेज नहीं कर पाती हो। वह उसी सरलता से नहीं कह सकती थी, क्योंकि तुम लोग खुद को बदलते नहीं। स्त्री नहीं छोड़ना चाहती घर, नहीं तोड़ना चाहती परिवार, पर तुम लोग हमें स्पेस नहीं देते। मेरी किस्मत यह रही है, मैं कार्यालय में पदाधिकारी कम स्त्री की तरह अधिक देखी गई, जबकि घर में तुम मेरे पद तबादलों को लेकर उत्पात मचाते रहे। चीजें शायद हमारे हाथ से छूट रही हैं। दोहा ने इन वर्षों में बड़े ध्वंस देखे। कभी दोनों अध्यापक थे, फिर एक साथ पीएससी दी, दोहा चयनित हुई। निष्काम नहीं, यह दोष दोहा का न था, जिसे निष्काम ने दोष की तरह देखा। वह इस तिकड़म में लगा रहता, कब अधिकारी पत्नी का पति होने का गौरव झलकाना है, कब असहायता प्रदर्शित करनी है, कब असहिष्णु हो जाना है, जबकि दोहा झिझक से भर गई कि निष्काम खुद को हीन न समझे। वह उसका अधिक ध्यान रखने लगी, सामंजस्य बैठाती रही, वह आपत्तियां लगाता रहा। हाँ, मैं आपत्ति करता हूँ क्योंकि तुम्हें जमाने से बचाना चाहता हूँ, क्योंकि जानता हूँ पुरुष कैसी रुग्ण मानसिकता के होते हैं और कैसी घटिया बातें करते हैं। वह उनकी मानसिकता है, मेरी नहीं। तुम सहयोग करो, एक बड़े पुरुष वर्ग के साथ काम करने में मुझे वैसे भी अड़चने हैं, मैं सहज नहीं रह पाती, स्त्री होने के बोझ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। क्या पता इस बोझ से मुक्त होने में हमें सदियाँ लगें। तुम नैतिक समर्थन दो तो मेरा मोरल बूस्ट अप रहेगा, पर वही तुम्हारा मेल ईगो। पृष्ठ 57। मेल ईगो, यह दोष मेरा नहीं वाई क्रोमोजोम का है। इसके कारण न मैं अपने ईगो को कंट्रोल कर सकता हूँ, न एंगर मैनेज होता है। सच यह है, मुझे भी एक साथी चाहिए। तुम्हारे ये तबादले, क्या अकेले मल्हार गाता रहूँ? लड़ते जूझते बीत रहे थे दिन। घर में निष्काम से जूझना होता, दफ्तर में विभागीय लोगों से, अकेले में अपने आप से। एक अकेली योद्धा कई मोर्चों पर लड़ रही थी। लड़ाई उस दिन खत्म हुई जब उसने पाया किसी के साथ अपना अकेलापन भरते हुए निष्काम दूसरा विवाह कर बैठा है। दोहा ने इस विवाह और विवाह से जन्मी तीन लड़कियों को इसलिए सहन नहीं किया कि वह खुद को असहाय पा रही थी, बल्कि इसलिए कि आपत्ति लगाने वाले पति से उसे त्राण मिला था। विवाह की रिपोर्ट लिखाकर निष्काम की शासकीय सेवा को खत्म नहीं किया गया कि फिर इस 20 साल की लड़की का क्या होगा, जिसने निष्काम की न आयु देखी न पृष्ठभूमि और चली आई अपनी किस्मत लिए। असहायता कहें तो इतनी भर है, निष्काम छठे क्षमा से धमक पड़ता है और वैवाहिक जीवन बचा हुआ है, जैसे भ्रम की ओट में खुद को किसी सीमा तक सुरक्षित रखने के लिए दोहा इस घुसपैठियों को रोकना नहीं चाहती है। दोहा रात भर सो न सकी, पर वक्त पर दफ्तर पहुंच गई। उसके चैम्बर में कर सलाहकार प्रमुदित गोस्वामी केस करा रहे थे, तभी स्थानीय अखबार का पत्रकार आ गया। मैडम, मोबाइल चेकिंग की क्या प्रगति रही? वसूली आप क्यों जानना चाहते हैं? केशरवानी जी ने कहा है आपसे इन्फॉर्मेशन लेकर न्यूज बना लूँ। इन्फॉर्मेशन केशरवानी जी से लें? यहाँ केस चल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैडम, कुछ आर्थिक सहयोग की उम्मीद लेकर आया हूँ, जाइए यहाँ से। आपके खिलाफ कुछ छापा गया तो विभाग की बदनामी होगी, जाओ यहाँ से। बहस के बाद पत्रकार टला। दोहा हैरान दिखी, देख रहे हैं गोस्वामी जी पत्रकार कैसे घुसे चले आते हैं? हम क्या इनके लिए काम कर रहे हैं? क्या कीजिएगा, मीडिया को खुश रखना पड़ता है। डीसी ने पूल बना रखा है, सभी अधिकारी 2,000 रुपया मंथली देते हैं, उसी में से पत्रकारों को कुछ दिया जाता है कि विभाग की अच्छी न्यूज बनाए, नहीं देंगे तो कुछ उल्टा सीधा छाप देंगे। छापें, हम क्या इनसे डर कर रहे हैं? क्या हमारी नौकरी चली जाएगी? मैं पूल में एक पैसा नहीं देती हूँ। आपके डीसी वसूली का लक्ष्य क्या है, इस पर साल भर ध्यान नहीं देंगे, फिर अंधाधुंध छापे, मोबाइल चेकिंग, दुकानदारों से वैध अवैध वसूली, बड़ी फैक्ट्रियों कंपनियों से प्रार्थना कि इतना जमा करा दीजिए, किसी तरह टारगेट पूरा हो। क्या कीजिएगा, हर जगह यही स्थिति है। मैं अपनी 20 साल की वकालत में पहली बार आप जैसी ईमानदार अधिकारी देख रहा हूँ, वरना यहाँ पैसे का खुला खेल होता है। मैं हैरान हूँ, अभी एक दिन मेरे चैम्बर में एक नेता घुस आया था, खुद को सत्ताधारी दल का सक्रिय कार्यकर्ता बता रहा था। कहने लगा, मैडम भोपाल जाना है, कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। मैंने मना किया तो बोला, आपसे पहले जो अग्रवाल जी यहाँ बैठते थे देते थे, सभी ऑफिसर देते हैं, आप इस तरह यहाँ नहीं रह पाएंगी। मैंने कहा, तबादला करा दीजिए, तो कहता है यही करना पड़ेगा, हद है। क्या कीजिएगा, राजनीति का दखल हर जगह है, अब नीतिबद्ध होकर काम नहीं चल पाता। आप ईमानदार हैं तो देखते रही हैं, आपसे कोई खुश नहीं है। न रहे, चलिए चाय मंगवाइए, काम का मूड बने, इस पत्रकार ने दखल दिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सफलतम अधिवक्ता प्रमुदित गोस्वामी अब दोहा की ईमानदारी, कार्यक्षमता, नैतिकता को स्वीकार करते हुए उसे सम्मान देने लगे हैं, किंतु आरंभ में दोहा के साथ इनका सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। ऐसे ऐसे बिंदु ढूंढ लाते थे कि वह असमंजस में होती थी। इस प्रकरण में कर की छूट दी जानी चाहिए या नहीं, दी जानी चाहिए तो कितनी? वरिष्ठ अधिकारियों से कभी सलाह मांगी तो कहा गया, मैडम आप तो बस खुश रहें, फैसला हम लिख देंगे। उसने उदासीनता दिखाई तो कहा गया, हमसे क्या पूछती हैं, स्वविवेक से काम लीजिए। इधर गोस्वामी चुनौती देते मिलते, मैडम आप पेनल्टी लगा देंगी, हम मुद्रा देकर ऊपर से माफ करा लेंगे। बेहतर होगा आप मुद्रा लें, पेनल्टी छोड़ें। ऊपर बैठे अधिकारी से छुड़ा ली गई पेनल्टी पर वह हैरान हो जाती थी। उन्हीं दिनों उसकी समझ में आया, काम आसान रहे, सब कुछ ठीक चलता रहे, इसलिए पुरुष अधिकारी भी वकीलों को सहयोगी बनाकर चलते हैं, तो उसे भी एक संकट मोचन तैयार करना पड़ेगा। उसका ध्यान गोस्वामी जी की ओर गया, इनकी प्रतिबद्धता इतनी भर है, अपने मुवक्किल को किस तरह लाभ पहुंचाया जाए। बाकी उसे महिला समझ घुसपैठ की कोशिश कतई नहीं करते हैं, बल्कि कई मौकों पर सतर्क किया है किससे सावधान रहना है। आज उसे यकीन है उसने सही आदमी पर भरोसा किया। 7:30 बजे दोहा की सेल पर डीसी का नंबर फ्लैश हुआ। वह आशंकित हुई, डीसी जवाब मांगेंगे, पत्रकार को उपेक्षित क्यों किया? यस सर। हाँ आचार्य जी, मैं मिसेस के साथ चंद्रनगर से लौट रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ, घर पहुँचने में देर होगी, आप होटल स्वागत को फ़ोन कर दें, दो लोगों का डिनर पैक कर बंगले में भेज दें। स्वागत का केस आप देखती हैं ना? ठीक है सर। कभी अपने लिए खाना नहीं मंगवाया पर डीसी के लिए। डीसी या काम इंस्पेक्टर अस्थाना को कह सकते थे पर हिट लिस्ट में दोहा ठहरी। पृष्ठ 58। दोहा ने न जाने क्या सोचकर अस्थाना को नहीं गोस्वामी को कॉल किया। गोस्वामी अपने निजी चैम्बर में सहायक आयुक्त देशपांडे के साथ किसी केस को लेकर चर्चारत थे। यस मैडम। गोस्वामी जी, होटल स्वागत को कह दीजिए डीसी के बंगले में उनके और उनकी बेटर हाफ के लिए डिनर भेज दे। डीसी के उपद्रव बढ़ते जा रहे हैं। ओके मैडम, मैं देखता हूँ। देशपांडे ने आनंद लिया मैडम से गुप्तगु। तभी डीसी कहते हैं, आप मैडम के अजीज हैं। मैं तो आपका भी अजीज हूँ सर। वकील निरी जीव होता है, वृद्ध से लेकर डीसी तक सबके उत्पात सहता है। अब लीजिए, होटल स्वागत में फोन करना है, डीसी के बंगले में खाना भेजे। साहब डायरेक्ट मुझे कह देते, स्वागत मेरा क्लाइंट है, मैडम को कष्ट देते हैं। मैडम साहब के मिजाज को समझें, कष्ट न देंगे। साहब तो मुझे मोहरा बनाना चाहते हैं। कहते हैं, देश पांडे जी, मैडम के चैम्बर का इंस्पेक्शन कर डालिए। मैंने कहा, सर मैडम का काम इतना व्यवस्थित रहता है कि अनियमितता शायद ही मिले। इसी कारण मुकुट बिहारी जी उन्हें महत्व देते थे। कहने लगे, मुकुट बिहारी पंडित पंडिताइन को महत्व देंगे ही। अब हम आ गए हैं ठाकुर। अरे अरे, अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक अभिव्यक्ति नहीं देनी चाहिए। फिर जिस दिन गोस्वामी जी डीसी के चैम्बर में केस करा रहे थे, औपचारिक तौर पर कह उठे, खाना कैसा था सर? होटल मालिक कह रहा था स्पेशल भेजेगा खाना। आपको कैसे मालूम? मैंने भेजने को कहा था ना। तो आचार्य जी ने आप पर भार डाल दिया? आपको नहीं लगता गोस्वामी जी महिला में अधीनस्थ भाव का अभाव है? ऐसा नहीं है सर। तो आप मैडम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? मैं अपना काम करना चाहता हूँ। सुनने में आया है आप आचार्य जी को लाइन मार रहे हैं, वे इस नेचर की नहीं है। यह बताए, आचार्य जी फैसले खुद लिखती हैं या आप लिखाते हैं? इतने अच्छे फैसले, इतना व्यवस्थित काम महिला नहीं कर सकती। गोस्वामी जी कहना चाहते थे, मैडम को तो नहीं पर जो केशरवानी जी आपके पास खास बने हुए हैं उनके बाबू को फैसले जरूर डिटेक्ट कराता हूँ। कह न सके। डीसी के विरुद्ध जाने के परिणाम घातक होते हैं। प्रत्यक्षतः बोले, सर मेरी राय में मैडम बुद्धिमान है, अपने काम के प्रति सजग भी। कहिए ना, हमसे सौमनस्यता बढ़ाएं। साहब ने गोस्वामी को अन्वेषी भाव से निरखा। आपका प्रमोद काल हनीमून चल रहा है, आप मैडम का पक्ष क्यों न करेंगे? दोहा आज फिर डीसी के चैम्बर में तलब की गई। डीसी भेद भरे अंदाज में कहने लगे, आचार्य जी, आपको यह शहर शायद रास नहीं आ रहा है। सामंजस्य बनाना सीखिए, वरना काम करना आसान नहीं होगा। अधिकारियों से नाराजगी, पत्रकारों से लड़ाई, नेताओं से दुश्मनी, वकीलों से असहयोग, अब गल्ला, व्यापारियों पर एक्शन। यह देखिए, आज का अखबार लिखा है, कर अपवंचन रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आपने गल्ला व्यापारियों से कारोबार का विवरण मांगा, उन्होंने नहीं दिया। कृषि उपज मंडी से सोयाबीन की आवक का विवरण मांगा, नहीं दिया गया। फिर आपने तीसरे तरीके का उपयोग कर गल्ला व्यापारियों के बैंक खाते सीज करा दिए। आपके आदेश हैं रिकवरी में तेजी लाई जाए। हाँ, पर यह तो देख लिया करें, जो लोग रिटर्न और कर जमा कर रहे हैं उन्हें न सताएं। यह सब देखकर ही काम कर रही हूँ, सुनती जाइए। लिखा है, जब संवाददाता ने वस्तु स्थिति जानने के लिए आपसे संपर्क करना चाहा, आपने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने मुझसे जानकारी मांगी। मैंने बात संभाली कि कर अपवंचन रोकने जैसी प्रोसेस करनी पड़ती है, इसी परिप्रेक्ष्य में खाते सीज हुए होंगे, वरना पता नहीं कितना छाप पर विभाग की छवि खराब की जाती। सर, मैं मीडिया को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तो मुझे चाव है जवाब देने का? आपको मालूम है ना, हमारा संभाग प्रदेश भर में बेहतर सालाना वसूली करके दिखा रहा है। ऐसे में आपके नकारात्मक व्यवहार से पत्रकार विभाग की छवि खराब करें तो अफसोस की बात है। दोहा न कह सकी। इस बेहतरीन सालाना वसूली में मेरी अहम भूमिका है, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह रिश्वत लेकर टैक्स जैसे मुद्दे पर रहम नहीं करती। बोली, पत्रकार विभाग से पैसे भी ऐंठे और छवि भी खराब करें, यह सचमुच अफसोस की बात है। दोहा ने अब स्पष्ट बोलने का इरादा कर लिया है। लड़ाई दृश्य पर आने को है तो परिणामों की फिक्र क्या करना। डीसी दोहा के साहस पर बार बार चौंकते हैं, अब भी चौंके, अफसोस इतना न बढ़ जाए कि पछताना पड़े। मैं यह सब नहीं सोचती, इस बहस ने दोहा को खिन्न कर दिया था। मोबाइल चेकिंग ने खिन्नता और बढ़ा दी, खिन्नता थी या संकल्प। स्पष्ट बोली, सर मैं आगे बढ़ूं बैठूंगी। किशरवानी जी ने कौतुक से देखा, मैडम मैं आपका सीनियर हूं, आपके ऐसे व्यवहार पर मुझे आपत्ति होती है। मुकुट बिहारी जी के कार्यकाल में नहीं होती थी। होती थी सर, आप मेरी समस्या नहीं समझ रहे हैं। पृष्ठ 59। समस्या हो तो समझूं, और यदि है तो समस्या आप खुद बनाती हैं। फील्ड में काम करना है तो पुरुषों को अछूत मानने से नहीं चलेगा, यह बात नहीं है। मैडम आपके एटीट्यूड से विभाग के लोग अपमानित होते हैं। आपको क्या इंस्पेक्टरों पर शक है, संदिग्ध हरकत करेंगे? ये सब इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार लोग हंसे, आप पदाधिकारी हैं इसलिए जाहिर तौर पर हम छेड़खानी नहीं करेंगे, पर आप महिला हैं तो स्पर्श सुख की हसरत हमारे दिलों में है। केशरवानी जी ने हाँक लगाई, अस्थाना जगह बनाओ भाई, पीछे नहीं बैठूंगी। दोहा का हठ प्रबल था, मुझे साहब से स्थिति बतानी होगी। आप स्वतंत्र हैं, जिद नहीं छोड़ेंगी। जिस दिन स्त्री के प्रति पुरुषों की मानसिकता बदल जाएगी, छोड़ दूंगी। यह आकस्मिक आचरण व्यवहार था या सामयिक मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना का रिफ्लेक्शन था या स्थिति से जूझने का पराक्रम, सभी ने देखा। दोहा सभी को स्तब्ध छोड़ मुख्य सड़क की ओर चल पड़ी और वहां से गुजर रहे ऑटो में बैठ गई। केशरवानी दो तरह से पराजित दिखे, उनके अधीनस्थ अधिकारी, वह भी स्त्री ने इंस्पेक्टरों के सामने उनकी उपेक्षा अवज्ञा की। दूसरे, मैडम की उपस्थिति से जो जोश और उत्साह बनता है वह लूट गया। उन्होंने इंस्पेक्टरों पर नजर डाली, इंस्पेक्टरों की भाव मुद्रा से ज्ञात न होता था दोहा की वीरता की दाद दे रहे थे या केशरवानी के पतन पर व्यथा दिखा रहे थे। केशरवानी परेशान होकर बोले, मुकुट बिहारी की बिगाड़ी हुई है, महिलाएं अपने अधिकारों का खुलकर प्रयोग करें, क्या भला लगता है? वाहन में आगे बैठने जैसी बच्चों वाली जिद कितनी क्षुद्र सी बात है। ड्राइवर चलो। उधर ऑटो चालक को पैसे चुका दोहा घर पहुंची। घर में सन्नाटा स्थायी था। इस बीच स्वाभिमान कितनी बार तो टूटा, फिर भी बचा रह गया था कोई विश्वास, किसी दिन सब ठीक हो जाएगा। वह अपने स्त्री होने के बोध से वैसे भी नहीं उबर पाती है और लोग बार बार याद दिला रहे हैं, तुम स्त्री पहले, अधिकारी बाद में हो। अब आने वाले दिन पता नहीं क्या गजब लेकर आएंगे। यदि इसीलिए टारगेट हो रही है कि वह लेडी ऑफिसर है तो चुनौती मंजूर। वह फिर डीसी के सामने थी। बुलाया सर। आचार्य जी क्या बात है, आपसे कोई खुश नहीं है? आप मुझे अकेले फील्ड में भेज दें। मैं अकेले क्या कर लेंगी, सुनने में आया है आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों का लिहाज नहीं करती हैं, वाहन में आगे न बैठने दिया जाए तो ड्यूटी नहीं करती हैं, पीछे बैठने में मुझे असुविधा होती है। हम क्या आपसे अपना व्यक्तिगत काम कराते हैं? जानती हैं ना, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, विवेक से काम नहीं करती हैं। यह बताएं, इस व्यापारी को किस विवेक बुद्धि से सेल टैक्स नंबर दिया है? नंबर देना सही था इसलिए दिया। आपने पैसे खा लिए तो सही हो गया। पैसे खाती हूँ तो किसी दिन ट्रैप करा दीजिए। जब्त करते करते आखिर दोहा चीख पड़ी। यह अलग बात है, चीख में आंतरिक रुदन कहीं झलक आया था। चीखिए मत, चुपचाप बैठी रहें, प्रतिवाद बिल्कुल नहीं, लोगों को आपसे बहुत शिकायतें हैं। वाहन में आगे कौन बैठे जैसी बात पर आप विवाद करती हैं, पत्रकारों को भगा देती हैं, नेताओं को महत्व नहीं देती, वकीलों का कहना है केस बिगाड़ देने जैसी धमकी देकर हरासमेंट करती हैं। जूनियर वकील तो यहाँ तक कहते हैं आपसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। व्यापारियों को शिकायत से आप उन्हें आतंकित करती हैं। सी फॉर्म निकलवाना हो तो कहेंगी कल आओ, अगले दिन आओ। दुकानदारों का कहना है बकाया वसूली को लेकर आप भय का वातावरण बना रही है। अचानक टीम के साथ पहुंचकर प्रतिष्ठान में ताला डलवा देने, संपत्ति कुर्क करने की धमकी देती हैं। क्या है ये सब? मुझे लगता है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर आप तक पहुँचाया जा रहा है। कहा न प्रतिवाद न करें, व्यापारियों से नम्रता बरतिए, वरना व्यापारी संघ की आवाज को रोकना हमारे लिए मुश्किल होगा। ज्ञापन, घेराव, धरना प्रदर्शन, बाजार बंद, ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो अब जरूरी हो चला है सर, विभाग के लोग घूस रिश्वत लेकर सही को गलत और गलत को सही करने से बाज आए, व्यापारी संघ शांत रहेगा। दोहा झटके से चैम्बर के बाहर थी। विभाग में खबर गर्म रही। डीसी और मैडम की ठन आई है, कुछ भी कहो महिला हिम्मती है। केशरवानी जी ने जब ट्रक चालक को माँ की गाली देकर रोका तो कहती है असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें, मैं शासन को लिखूंगी। डीसी ने कहा कितने पैसे खाए हैं तो कहती है किसी दिन ट्रैप करा दीजिए। और जब डीसी कहते हैं बहुत तेजी दिखाती है, क्या उम्र है आपकी, तो कहती है आप मेरे लिए फादर फिगर हैं, उम्र का अनुमान लगा लीजिए। ऐसी दबंग अधिकारी अब तक न देखी थी। दबंगई न दिखाएं, अफसरों के साथ जुगाड़मेंट के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, वरना क्या होगा। CR खराब प्रमोशन पर असर। CR मुकुट बिहारी ने CR में लिखा था उत्कृष्ट, अब लिखा गया घटिया। पिष्ट 60। कारण बड़ा सामाजिक था, यही कि दोहा ने साहब से निकटता बनाने में बेरुखी दिखाई। लंबित प्रकरणों के निपटारे के बाद कालावरोधित प्रकरणों के अलावा आगे के वर्षों का निवर्तन किया गया, फिर भी CR में लिखा गया प्रकरणों के निराकरण में बदनियति के साथ शीघ्रता की गई। दोहा ने वसूली का लक्ष्य प्राप्त किया, पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व आय में 10% की वृद्धि हुई, फिर भी लिखा गया अधीनस्थ भाव का अभाव है, फील्ड में अकेले जाना चाहती हैं, निष्ठा संदिग्ध है। CR के सभी पॉइंट्स में घटिया लिखा गया। विभाग को पहली बार लगा एक अकेली महिला को अकारण सताया गया, तो अब मैडम कैसा महसूस कर रही होंगी। यही असमंजस गोस्वामी के सामने था। दोहा के चैम्बर में जाते हुए झिझक रहे थे, औरत हैं कहीं रो न दें, तो दो अधिकारियों की इतनी लंबी लड़ाई अब तक न देखी थी। आइए वकील साहब, दोहा के मुख पर इस वक्त जो मुस्कान थी वह संतोष असंतोष दोनों को जाहिर कर रही थी। आज जद्दोजहद खत्म हुई, जो हुआ गलत हुआ, आपका प्रमोशन ड्यू है। हाँ तो, मुस्कान हंसी में बदल गई। हंस रही हूँ कि जिनके कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं वे मेरे कैरेक्टर रोल में लिख रहे हैं। घटिया जो खुद नैतिक नज़र नहीं रखते लिखते हैं निष्ठा संदिग्ध है, जो खुद दुराग्रह दुर्भावना से भरे हैं लिखते हैं अधीनस्थ भाव का अभाव है। जानते हैं यह सब क्या है, समाज की असंतुलित चेतना का परिणाम। प्रमोशन तो होगा देर से सही, पर आज मेरे सारे डर खत्म हो गए। CR बिगड़ने का डर था, बिगड़ गया। DC अधिकतम यही कर सकते हैं, बाकी वे न मेरा तबादला करा सकते हैं न निलंबन। अब मैं तनाव मुक्त होकर काम कर सकूंगी, देखिएगा मेरे सर्किल का प्रदर्शन और बेहतर होगा। आपको लगता है सिस्टम से अलग यह जो पैरेलल सिस्टम बनता गया है इससे आप अकेली जूझ सकती हैं। व्यवस्था स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए बनाई गई है, पर अफसोस व्यवस्था ही स्थिति को अनियंत्रित करने लगी है। फिर भी मेरा मानना है जो सही है जीत उसी की होती है, इसी विश्वास को लेकर मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। हो सकता है मैं न जीत सकूँ, पर लड़ाई जारी रहेगी। मेरे हिस्से की लड़ाई कोई और स्त्री लड़ेगी, जीतेगी। मर्यादा खोकर डेकोरेटिव पीस बनकर काम आसान किया जाए, मुझे इस सोच से नफरत है। नफरत है शॉर्टकट से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लंबे रास्ते उपयुक्त और भरोसेमंद होते हैं, शॉर्टकट भटका देते हैं। और यह जो पैरेलल सिस्टम की बात है, मैं इसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं हूँ। चलिए चाय मंगवाइए, काम का मूड बने, चाय आज मेरी ओर से। हंस रही थी दोहा, चकित थे गोस्वामी। न बौखलाहट, न सियापा, न किसी का चरित्र हनन, न अपशब्द, न अधिकारों का दुरुपयोग, न अनैतिक असामाजिक चेष्टा, ऐसा विलक्षण पदाधिकारी इस दफ्तर में अब तक न आया था। पृष्ठ 61। कहानी विरासत। लेखिका मधु कांकरिया। चर्चित लेखिका मधुकाकरिया की यह कहानी स्त्री के जीवन में आए प्रेम के बनते बिगड़ते समीकरणों को पैनी निगाहों से अपनी जद में लेते हुए जीवन की विद्रूपता को सजगता पूर्वक खोलती है। बदलते समय में स्त्री मन के कोनों पर चढ़ी धूल को आहिस्ते से पहुँचते हुए जीवन की रिक्तता और अंतर सुप्त व्यथा को व्यंजित करने वाली मार्मिक कहानी। जिंदगी का जो नवीनतम नुस्खा उनके हाथ लग गया था, उसमें जिंदगी एकाएक अंगूर का वह गुच्छा बन टपक पड़ी थी, जिसकी आखिरी बूंद तक चूस लेने को कटिबद्ध थे दोनों। नई हवा, नए सोच और शहर के बदलते हुए मिजाज ने हौले से चुपके से उनके कान में फूंक मारी थी। रिएक्शन नहीं, एक्सेप्टेंस। शायद वही एक रास्ता बचा था जो उनकी कुदरती वासनाओं और उद्योगों का शमन कर सकता था। इस कारण लहरों की तरह आवेग उस पर बहता रहा, फूलों की तरह उन्माद उन पर झड़ता रहा। उन्हीं दी आंखों में बेशुमार स्वप्न लिए नदियों ने तटबंध तोड़े, नक्षत्रों ने अपने परिधियों का अतिक्रमण किया। बहरहाल इसकी तार्किक और जैविक परिणति यह हुई कि एक जवानी के पूर्व जवान हुई तो दूसरा बालों में काली मेहंदी लगा लगाकर बियाग्रा का सेवन कर जवानी की पूंछ पकड़ा रहा। जाहिर है दोनों विपरीत सेक्स के थे। लड़की का नाम दीपा था और पुरुष जिसे वह अपना आल्टर ईगो कहती थी का नाम कुलभूषण था। आईआईटी इंजीनियर मिस्टर कुलभूषण के व्यक्तित्व की कई परतें थीं। सबसे ऊपरी परत तो यही थी कि वे दो खूबसूरत नन्ही मुनियों के पिता थे, एक पति थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे अंदरूनी परत यह थी कि वे एक कमसीन टीन एजर के दिलरुबा महबूबा भी थे। आखिरी परत यह थी कि वे कवि थे। गालिब, दुष्यंत कुमार और फिराक गोरखपुरी ने उन आईआईटी इंजीनियर साहब को गजल, स्वप्न, कला और कविता का जीव भी बना दिया था। इसी कारण संभवतः उन्हें जिंदगी के एक स्वप्निल मुकाम पर प्रेम और प्रेमिका दोनों की ही जरूरत का एहसास हुआ। और फिर आई वह दिलरुबा शाम, जिसने आखिर उनसे उनकी दिलरुबा को मिलवा ही दिया। उस शाम एक किशोर की आत्मा प्रविष्ट कर गई थी उनमें, एक उत्तेजना, आवेग, उन्माद और रोमांच रह रह कर कांपता रहा दोनों ओर, जिसकी ठिठुरन और निःशब्द खामोशी में रह रह कर चिल्लाते रहे दोनों, वी आर इन लव। पृष्ठ 62। वी आर इन लव कहते हुए वे एकाएक मुग्धावस्था की भाव दशा में आ गए थे, क्योंकि इसके बाद ही सब कुछ एकाएक बदल गया था। धरती का वह टुकड़ा जिस पर बैठे थे वे दोनों और जिसके विस्तार में कोलकाता का सबसे शानदार सांस्कृतिक केंद्र एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट खड़ा था, एकाएक जन्नत के नूर सा जगमगाने लगा था। बदरंग आसमान एकाएक तारों का झमकता झूलना बन बैठा था। उस शाम आसमान में काली मेघमालाएं नहीं, दीपा का मलमल का गुलाबी दुपट्टा लहराया था और धरती पर कुलभूषण के सिगरेट का धुआं नहीं, वरन बादल का वह टुकड़ा उमड़ कर आ गया था जो आदिम युग से दूत बना प्रेमी का संदेश प्रेमिका को देता रहा था। ऐसी ही वह एक रात थी जो एकाएक खौलता हुआ सागर बन गई थी, जिसमें उद्दाम आवेग और उफान लेती कामनाओं ने जिंदगी से अंतरंगता स्थापित की थी। सपनों ने बाजूबंद पहने थे और जिसकी छुअन से दीपा ने वह महसूसा जिसे अभी तक की अपनी 16 वर्षीय जिंदगी में कभी भी न महसूसा था, जिसके संस्पर्श से वह किशोरी से एकाएक एक स्वप्निल औरत बन गई थी, जिसकी थर थराती मांसलता में उसी भोर उसने अपनी डायरी में लिखा था, प्रेम जिंदगी का ब्लैक बेल्ट है। उन्हीं दिनों उसने शौकिया कराटे भी सीखना शुरू किया था, जो प्रेम के चलते येलो बेल्ट तक भी नहीं पहुंच पाया था। 7:45 तक चली यह प्रेम कहानी, जिसके फर्स्ट हाफ में दोनों ने नए नए क्षितिजों को पार किया। इस दौर में धूप और हवा की तरह प्रेम ही सत्य था, फिजा में सुख ही सुख था। पर कहानी के सेकेंड हाफ में कई स्पीड ब्रेकर आ गए, इस कारण कहानी कभी स्लो मोशन में चली तो कभी फास्ट मोशन में, कभी यह रिमझिम बारिश में भीगी तो कभी टुपुर टुपुर बूंदाबांदी में। प्रेम को जीवन का ऑक्सीजन मानने वाली दीपा ने इस जीवन के हर मौसम का स्वागत किया, पर जब देखा देखी और मिलन भेंट लंबे समय तक स्थगित होती रही और प्रेम का वह हरा भरा पेड़ कुंभलाने लगा, तो उसके मन में अपने विवाहित प्रेमी के प्रति अजीबोगरीब आशंकाएं और दुश्चिंताएं सिर उठाने लगीं। फिर धीरे धीरे सपनों की तरह उसने उन दुश्चिंताओं और आशंकाओं को भी संभालना सीख लिया था। जब कभी वे उत्पात मचाती, वह आधी रात में अचानक उठ गए बच्चे की माँ की तरह उन समस्त आशंकाओं और दुश्चिंताओं को थपथपा कर सुला देती। पर जिंदगी फिर भी जिंदगी थी। वह आधी रात में अचानक उठकर बैठ गए, बच्चे की नींद नहीं थी जिसे वक्त बेवक्त थपथपा कर सुलाया जा सके। इस कारण जैसे जैसे प्रेम से दूरियां बढ़ने लगी, आशंका का एक साया उसके साथ साथ चलने लगा। उस सोच ने पहले उसे अनिद्रा दी, फिर उसके वजन को घटाया, फिर भूख पर झपट पड़ा। आखिर घबराकर उसने डॉक्टर को फोन किया। सुदीर्घ अंतराल के बाद फिर कुलभूषण को फोन किया। जब वह लगातार फोन पर अनुपलब्ध मिला तो आखिर में दो पंक्तियों की एक चिट्ठी लिखी। अब जीने की चाह नहीं, एक बार मिलना चाहती हूँ, आखिर बार, आखिरी बार। डॉक्टर आए पर कुलभूषण नहीं आए। प्रेम का वह खरगोश पत्नी और पुत्रियों की उन झाड़ियों में ही वापस लौट गया था जिसका वीसा दीपा के पास नहीं था। प्रेम की मिठाई से अब उन्हें डायबिटीज हो गई थी और रोग को वे अब और बढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्हीं जलते दिनों की एक शाम दीपा ने उत्तर कोलकाता के देशबंधु पार्क के पिछले दरवाजे से निकलते हुए अचानक एक नीली फिएट खड़ी देखी। वही नंबर, वही रंग। एक क्षण के लिए चमत्कृत रह गई वह। उसने वही सोचा जो उसके मन ने चाहा। क्या कुलभूषण उसे लेने आए हैं? वे जानते थे कि हर शाम वह घूमने के लिए निकलती है। क्या नहीं भूल पाए वे उसे? कैसे भुलाई जा सकती है वे उच्चतम और दिव्य अनुभूतियां जिन्होंने जिंदगी को जिंदगी दी। पर थोड़ा करीब आते ही गाड़ी सर्र से निकल गई। पर क्षण के क्षणांश ने भी जो देखा, उस दृश्याघात ने उसे उसी प्रकार युवती से प्रौढ़ बना डाला जिस प्रकार कभी प्रेम की पहली छुअन ने उसे किशोरी से युवती बना डाला था। उसने देखा कि जिस अनपढ़ गंवार और फूहड़ पत्नी के साथ अपनी केमिस्ट्री नहीं मिल पाने का राग इंजीनियर साहब दिन में 70 बार अलापा करते थे, उसके साथ न सिर्फ उनकी केमिस्ट्री वरन जोगोग्राफी भी मिली हुई थी। उसी क्षण उसने अपने पर्स में रखी कुलभूषण की तस्वीर को चिंदी चिंदी कर हवा में उछाल दिया और डूबते सूरज के साथ अपने प्रेम को भी दी आखिरी विदाई। इस प्रेम ब्रेक और ऊसर होती जिंदगी का साइड इफेक्ट यह हुआ कि दीपा बाहर से अपने भीतर चलने लगी और कई मर्तबा चलते चलते इतनी दूर निकल जाती वह कि कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते कुछ और पढ़ाने लगती, इतिहास से दर्शन पर आ जाती। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के लंकाशायर में हुई औद्योगिक क्रांति से आत्मक्रांति पर आ जाती, बुद्ध के अष्टमार्ग को समझाने लगती और जब कक्षा की चंद तेजस्वी छात्राएं उस भटकैया को ठिकाने पर लाने की चेष्टा करती तो एक आह उसके भीतर की तलछट से निकलती। स्टाफ रूम की खिड़की से दिखते पेड़ की हिलती डाल पर बैठे मैना को वह देर तक देखती रहती। उसका अगला पीरियड भी निकल जाता पर हिलती डालियों के हिलते पत्तों को देख इस ब्रह्मांड के भेदों तक पहुंचने का उसका सिलसिला नहीं टूटता। पर एक शाम तो गजब हो गया। कक्षा में श्यामपट्ट पर पॉल डायनेस्टी के सत्यों को लिखते लिखते उसने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के खंडित सत्यों को लिखना शुरू कर दिया। उसने लिखा, सूत्र 1, जिंदगी बकवास है, प्रेम उससे भी बड़ा बकवास, और भारतीय युवक तो सिर्फ रिश्ते निभा सकता है, प्रेम तो वह कर ही नहीं सकता है क्योंकि उसके सिर पर इतिहास, परंपरा, संस्कृति, समाज और परिवार का इतना दबाव रहता है कि प्रेम जैसी नाजुक कोपल इन भारी भरकम शिलाओं तले एक सिसक कर दम तोड़ देती है। सूत्र 2, और विवाहित प्रेमी, उससे प्रेम करना परले दर्जे की मूर्खता है, वह प्रेम नहीं करता, वह तो सिर्फ परिवार और पत्नी की गर्मी और घुटन से बचने के लिए अपने एकाध गवाक्ष खोल देता है जिससे ठंडी शीतल हवा के झोंके उसके थके हारे झुलसाए तन मन को सहला सके। घुटन खत्म, गवाक्ष बंद। पृष्ठ 63, सूत्र 3, हाँ, पत्नी से उसका रिश्ता धरती के रिश्ते की तरह रहता है जिसे वक्ती खुमार में वह काटता छाटता चाहे रहे पर उसे उखाड़ कभी नहीं पाता, और रपटा रपटा पत्नी का पेड़, उसकी जड़ें, शाखाएं और टहनियां उसकी जमीन पर इतनी सघनता से फैल जाती हैं कि किसी दूसरी के लिए कोई जगह ही नहीं बच पाती है। सूत्र 4, जिंदगी हाथों से निकल जाती है, ठीक उस लम्हा जब हम स्वप्न सजाने और योजनाएं बनाने में व्यस्त रहते हैं। सूत्रों का यह सिलसिला जाने कब तक चलता रहता कि जाने किस छात्रा ने चरम अनुभूति के ज्वार में प्रिंसिपल को दीपा की अंदरूनी हालत का जलवा दिखा दिया, जिसके फलस्वरूप अगले ही दिन लेक्चरर दीपा को महीने भर के लिए आराम करने की हिदायत दे दी गई। यह महीना भर जानलेवा साबित हुआ। काले पहाड़ से फैले अंतहीन समय को वह काट नहीं पाती तो समय उसको काटने लगा। वह दिन भर चलती रहती और चलते चलते वहां पहुंच जाती जब जिंदगी चिड़िया के पंखों सी हल्की थी और नीले आसमान में उड़ा करती थी। ऐसे में विगत के अंधेरों से आती हुई आवाजें उसका जीना हराम कर देती और वह सोचने लगती कि क्यों हुई उसकी जिंदगी इतनी वजनी कि न हिले न डुले। वह बार बार सोचती, इतना कि सोचते सोचते उसे फिट आ जाती, दांत भी जाते, नथुने फड़फड़ाने लगते। होश आता तो वह फिर पिंजरे में बंद शेरनी की तरह खाली कमरे में गश्त लगाती रहती और दांत भीच भीच कर तीन शब्द, सिर्फ तीन शब्दों को दिन भर चबाती रही। वे तीन शब्द थे, रिवेंज, रिवेंज और रिवेंज। एक बार उसकी जूनियर कुलीग ने उसे बुदबुदाते हुए सुन लिया। उसने उसे समझाया, नो मैडम, नो, N-I-4-N-I विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। यदि कोई तुम्हारी एक आंख फोड़े और बदले में तुम भी उसकी आंख फोड़ने पर उतारू हो जाओ, और यदि यही सिलसिला चलता रहे तो क्या होगा, दुनिया अंधी हो जाएगी। स्वभाव से उदार मना दीपा को कुली की बात सारगर्भित लगी और उसने स्वयं को प्रतिशोध की छिछली हरकतों से दूर तो कर लिया, पर बूंद बूंद जमा होता आक्रोश, भटकन, उपेक्षा और अपनापन के धुएं ने भीतरी लयताल को इस कदर गड़बड़ा दिया कि बाहर भी उत्पात मचने लगा। वह बोलती तो बोलती ही जाती, हंसती तो हंसती ही जाती, रोती तो रोती ही जाती। भावनाओं पर नियंत्रण का स्विच पूरी तरह ऑफ हो गया था। कहानी के इसी मोड़ पर जब उसकी जिंदगी में कोई कहानी नहीं बची थी, एक नई कहानी उदित हुई। हुआ यह कि एक बदरंग शाम उस पर हंसी का ऐसा दौरा पड़ा कि वह 3 दिनों तक लगातार हंसती रही। कुम्हड़े की तरह सिर हिलता रहा, कानों के कुंडल डोलते रहे। ऐसी भयानक हंसी उसके भाई भाभी ने उस पर नियंत्रण पाने के लिए थप्पड़ मारे, उसके होठों पर हथेली जड़ दी, पर उसकी हंसी की आधी नहीं थमी। और जब थमी तो जो रोना शुरू हुआ तो ऐसा कि दिल दहल जाए। 3 दिनों तक जीवन आस्था को मटिया मेट करता किसी काले अपशकुन सा जारी रहा उसका क्रंदन। इस घटना से सबके कान खड़े हो गए। उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया। मनोचिकित्सक डॉक्टर जालान ने पूरी केस हिस्ट्री का अध्ययन कर नाक तक लुढ़क आए चश्मे को ऊपर सरकाते हुए पूरी गंभीरता के साथ अपनी गंभीर आवाज में कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रेम करने के लिए ही जन्म लेते हैं, जिनके भीतर प्रेम का झर झर झरना सतत बहता रहता है। यदि किसी कारणवश वह झरना अवरुद्ध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति रुका हुआ पोखर बनकर एक अजीब तरह की बू छोड़ने लगते हैं, भाव शून्यता की बू। यदि उपचार नहीं किया गया तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, बू उसे छूती हुई उसके पूरे वजूद को निकल लेती है। नहीं, कोई खुदा कोई अजान ऐसे में काम नहीं आती। तो कैसे रोका जा सकता है इस बू को? प्रेम की तो प्रॉक्सी भी नहीं दिलवाई जा सकती है ना। मैट्रिक फेल छोटे भाई सुशील गुप्ता ने ललाट पर उगाए पसीने को पोंछते हुए पूछा। कुलभूषण न सही, उसके सब इंस्टीट्यूट स्थानापन्न को तो खोजा जा सकता है। आप राग के केंद्र को बदल दीजिए, मन के खाली घोंसले में दूसरे परिंदे को बैठा दीजिए। देखिए, बू को नो एंट्री हम दिखा देंगे। सुशील गुप्ता ने अपने माथे पर 3 ठोका लगाया और बड़ी देर तक पूरी गंभीरता के साथ समस्या पर चिंतन करते रहे। आखिरकार अपनी बड़ी बहन के साथ लगभग एकात्म हुए सुशील गुप्ता समझ गए क्या है रोग का निदान। और जब पूरी शिष्ट के साथ उदासीनता अनुभव करती दीपा प्रतिदिन मरती जा रही थी, तो एक जिंदा सुबह उन्होंने अपनी 5 महीने की नवजात पुत्री नन्ही को उसकी गोद में डाल दिया। यह अब तुम्हारी जिम्मेदारी। अनजान गोद में धकेले जाते ही नन्नी अपनी कच्ची आवाज में काए काए कर उठी, तो स्वाभाविक स्नेहवश जब दीपा ने सिर पर वात्सल्य भरा हाथ फेरा तो वह चुप हो टुकुर टुकुर ताकने लगी उसी की तरफ। बच्ची, मेरी बच्ची, उसके होठ बुदबुदाए। मुद्दत बाद उसके भीतर कोई फड़कन हुई। मरी हुई चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए, सकून सा महसूसा उसने, जैसे तप्त धरती पर बारिश की पहली फुहार पड़ी हो। उस पूरी सुबह, दोपहर, यहाँ तक कि शाम भी नन्ही के साथ ही खेलती रही वह, खेल खेल में ही जैसे भीतर का गड्ढा भरने लगा। बंद खिड़कियाँ खुलने लगीं तो दिमाग भी दौड़ने लगा। दौड़ते दिमाग के साथ मन की अलग अलग फुनगियों पर विचारों के परिंदे भी उड़ान भरने लगे। एक मन कहता चमगादड़ की तरह फड़फड़ाते मन का शायद यही इलाज, तो दूसरा मन कहता इतनी दुधमुही बच्ची का माँ का दूध छुड़ाना नहीं, 9-10 घंटों की रेल यात्रा, यदि कभी अचानक बीमार पड़ गई तो। लहर दर लहर उठती आशंकाएं। अपनी भाभी को जब कहा उसने कैसे रह पाएगी वह बिना माँ के, तो बड़ी सादगी और सहजता से जवाब दिया उसने, जैसे पिछले 24 घंटों से रह रही है वह। क्या क्या मतलब? मतलब यही जी जी कि मैंने तो उसे पिछले 24 घंटों से ही दूध पिलाना बंद कर दिया है। क्या? पृष्ठ 64। गौर से देखा फिर उसने अपनी भावज की ओर। वह मौन थी, शांत थी, निर्द्वंद थी, किसी ऋषि की तरह। वह आश्वस्त थी किसी सांसारिक की तरह, अपनी पुत्री के भविष्य के प्रति पूरी तरह। देखते देखते जिंदगी ने यूं टर्न लिया और जो जिंदगी मार खा खा कर टीन के कनस्तर की तरह फैल पिचक कर बेडौल हो चुकी थी, एक बार फिर वह हवा, माटी, आवाज़ों और मासूम खिलखिलाहटों से भरने लगी। दीपा फिर जीने लगी, खुशियों ने फिर घर की ओर रुख किया। जिंदगी के इन नए संस्करण में अब नन्ही के लिए वह कभी घोड़े की पीठ थी, कभी रेलगाड़ी का इंजन, तो कभी ऊंट, हाथी, घोड़ा, पालकी, चंदा मामा दूर के से लेकर दमादम मस्त कलंदर तक सारे भूले बिसरे गाने उसके होठों को छूने लगते। इस दृश्य परिवर्तन के जगमगाते उजास में अब वह फिर एक ऐसी माँ थी जिसकी सारी अंतरशक्तियों और अंतःस्रोतों का बहाव आभा की ओर मुड़ गया था। जीवन के अनुभवों से उपजे ज्ञान, प्रेम के टूटते तिलिस्म और महीनों की बौद्धिक कसरत के बाद उसने नन्ही का नामकरण किया आभा। आ यानी आर्थिक, भा यानी भावना, यानी ऐसी शख्सियत जो उसकी तरह आधी अधूरी नहीं वरन संपूर्ण हो, यानी आर्थिक और भावनात्मक दोनों सबल पंखों के सहारे आसमान में उड़ती कोई कबूतरी। इसके बाद शुरू हुआ आभा को आभा बनाने का सिलसिला। पट्टी पूजन मॉन्टेसरी से होते हुए कोलकाता के शीर्ष स्कूल में दाखिला तक ही चिंता का दौर नहीं थमा। सड़क दुर्घटना, डबल डेकर बस, धड़ धड़ चलती मोटरों, ट्रकों और गाड़ियों के हुजूम वाले इस दैत्याकार शहर में वह नन्ही को बंदरिया के बच्चे की तरह स्वयं से चिपकाए रखती, स्वयं स्कूल पहुंचाती और स्वयं ही लेकर आती कि कहीं कोई ट्रक उसे टक्कर न मार दे। लबो लुआब यह कि अब जिंदगी की पाठशाला में हर दिन एक नया एहसास दाखिला ले रहा था, जिसमें सबसे बुद्धिमान एहसास यह था कि लड़कियों की जिंदगी के ऊंचे नीचे ग्राफ के पीछे बहुत कुछ हाथ उन नादान माओं की असफल भूमिका का भी होता है जो सही वक्त पर पुत्रियों को सही दिशा निर्देश देने से चूक जाती हैं। उसे याद आया उसकी एक फ्रेंच कैनेडियन मित्र थी बलेउर, जिसने अपनी माँ के चलते ही 18 वर्ष की उम्र में आत्महत्या करने की असफल कोशिश की थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे गर्भ निरोधक के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी थी और उसे गर्भपात का सामना करना पड़ गया था। खुद उसे अपनी माँ से दर्जनों शिकायतें थीं। काश उसकी माँ ने भी उसे इतना सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन द्रव्य दिया होता कि उसे फ्रायड ही अंतिम सत्य नहीं लगता, तो क्या वह दरवाज़ा कभी खुलता जिसमें घुसकर उसकी खुशियों के बाकी सभी दरवाजे अधबीच में ही बंद हो गए थे। और अनायास ही वह एक अच्छी माँ की भूमिका में उतरते उतरते माओं की आदिम श्रृंखला से जुड़ जाती, उसके निजी सुख दुख घर के रोशनदान से उड़ जाते और एक दिन वह पाती कि उसने अपनी रात की मीठी नींद और आरामदायक पलंग छोड़ अपनी चटाई आभा के कमरे के फर्श पर बिछा दी है, जिससे रात आधी रात आभा के वयस्क टीवी चैनल को देखने की संभावनाएं ही पैदा न हों। भीतर की गहराइयों से एक हूक सी उठती कि जो एकला चलो रे वाली छूछी जिंदगी उसे जीनी पड़ी है, वैसी हरगिज किसी भी सूरत में आभा के साथ न हो। और इस भूख के साथ ही वह दूने उत्साह से आभा की परवरिश ही नहीं वरन उसके अंतःकरण और व्यक्तित्व को भी गढ़ने में जुट जाती। उसने उसे भरतनाट्यम और मणिपुरी नृत्यों की तालीम दिलवाई, जिससे जहाँ तक संभव हो उसे संगीत, कला और साहित्य के सानिध्य में रखा जाए, जिससे टीवी, सिनेमा, किशोर किशोरियों की अधकचरी, प्रेम, सेक्स की कहानियाँ और अपसंस्कृति, फैलाता विज्ञान उनके कच्चे किसलय मन पर कोई जहरीली छाप न छोड़ सके। सुदीर्घ ग्रीष्मावकाश में भी वह शहर में नहीं रहती, वरन उसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाती। कभी दीघा, कभी पुरी, कभी शांति निकेतन तो कभी सुंदरवन ले जाना, जिससे उसका अधिकतम सांस्कृतिक, कलात्मक और आध्यात्मिक विकास किया जा सके। नई सृष्टि के पुनर्सृजन की व्यस्त दिनचर्या में दिन रात वह सिक्के की तरह घिसती रहती, जिसके सतह पर सब कुछ सहज सामान्य नजर आता, पर अंतरधारा में जिंदगी की अधूरी प्रेम कहानी, असफल इतिहास और पुरुष विहीन दिन रातें चमगादड़ों सी फड़फड़ाने लगती। पर इन सबके बावजूद जिंदगी ने अपना शॉर्टकट निकाल ही लिया था, और तब कहानी के उत्तरार्ध में नव यौवन ने आभा के द्वार पर दस्तक दी, और इसके साथ ही इतिहास की प्रोफेसर दीपा को कुमार संभव की वे पंक्तियां याद आईं। नव यौवन ने मेरी देह लता पर ऐसे रंग न बरसाए जैसे आभा पर बरसाए, और यही वह बिंदु था जब इस कहानी ने दर्दनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। यही वह दौर था जब भूमंडलीकरण, बाजारवाद और उपनिवेशवाद की विषैली हवाओं में युवा पीढ़ी बहने और बहकने लगी थी। देश के एक तबके में खुशहाली की चमक एकाएक इतनी बढ़ गई थी कि बाकी चौधियाए तबकों पर भी खुशहाल और सफल दिखने का दबाव बढ़ गया था। जीवन सहजता और बुनियादी जरूरतों से दूर छिटकने लगा था। विचार शून्यता के इस दौर में आभा को भी अब दीपा की बातें आउटडेटेड लगती। रफ्ता रफ्ता उसने भी दीपा के बोध वृक्ष तले बैठना बंद कर दिया था। पृष्ठ 65। अपने गुरुत्वाकर्षण से दिनों दिन दूर छिटकती आभा को देख दीपा को कभी गोगोल, जिंदगी बहुत बोर है दोस्तों, तो कभी उपनिषद के वेद वाक्य, तुम्हारा प्रिय ही तुमको रुलाएगा, याद आते। उसने परिदृश्य स्वयं को हटाना भी चाहा, पर अतीत का जंगल, डरावने जानवर, जंगल की नोच खसोट, भयावह अंधेरे और साय साय आवाजें इस कदर उसकी आत्मा पर पसर जाती कि वह कांप उठती। वह सोचने लगती, क्या किसी कमजोर लम्हे की विवेकहीन भूल ने उसकी जिंदगी को धुआं नहीं कर डाला। उसे याद आता कि प्रेम के गुलाबी मायावी दिनों में वह फोन पर ऐसे ही झपटती जैसे कोई मरता हुआ आदमी जिंदगी की सांसों पर, और देखते देखते आभा दीपा में रूपांतरित हो जाती। टिरिन टिरिन बजती नहीं कि आभा झपट पड़ती फोन पर। जरूर कोई गड़बड़ है, वाले भेद से दीपा उसकी अलमारी और बुक शेल्फ पर छापामार शैली में धावा बोल देती, पर न कोई प्रेम पाती मिलती और न ही कोई ऐसी वैसी तस्वीर ही हाथ लग पाती। अलबत्ता एक बार उसकी क्लास नोटबुक में उसे लीनियर प्रोग्रामिंग वाले अध्याय के ऊपर वाले कोने में उसके प्रोफेसर का कार्टून जरूर मिला, जिसमें एक में उसे गंजे के रूप में तो एक में गधे के रूप में दिखाया गया था। संतुष्ट हो उसने उसकी क्लास नोटबुक फेंक दी तो उन्हें पड़ी नोटबुक में एक उद्धरण पर नजर पड़ी जिसकी लिखावट कुछ अलग थी। धड़कते दिल से उसने नोटबुक उठाया तो देखा उसमें मिल्टन का कोई उदाहरण था। लिखा था, दे आल्सो सर्व हु वेंट एंड स्टैंड, वे भी सेवा करते हैं जो धैर्य पूर्वक रहकर प्रतीक्षा कर सकते हैं। उसे अपने ऊपर भीषण ग्लानि हुई। व्यर्थ ही उसने उस पर शंका की, जबकि वह तो उसी की तरह अपने बौद्धिक विकास को अधिकतम करने से जुटी है। तांत की साड़ी के पल्लू से ललाट का पसीना पोंछते हुए उसने राहत की एक लंबी सांस खींची। रात शांत और शानदार गुजरी, पर दूसरे दिन फिर भीतर खलबली मच उठी जब उसने देखा कि फोन की एक टिरिन टिरिन ने आभा को इतना उतावला कर डाला कि सामने रखा दूध का कटोरा भी उसे न सूझा। उसे भी ठोकर मार कटोरे को भी बिना उठाए लगभग उड़ते हुए झपट पड़ी वह रिसीवर पर। पर्दे की फाँक से पड़ती रही वह उसके चेहरे पर आते जाते भावों को, चेहरे पर कभी स्वप्निल मुस्कान तो कभी बौद्धिक खिंचाव, मनावन रिझावन के अबीर गुलाल भी जब तब उड़ते रहे। पूरी चेतना कानों में सिमट आई, प्राणों की पूरी शक्ति के साथ सुनना चाहा भी तो क्या सुना, फट्टा मत मीर, आजकल बहुत फेंकने लगा है, शिट यार, चाट मत, केला हो गया मेरा, इतना सेंटी मत हो यार, हिश कैसी भाषा बोल रही है यह पीढ़ी भी। फट्टा मत मार, शिट यार। सारे घोड़े दौड़ाकर भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तो पहली बार उसके निजी क्षेत्र में घूमने की सार्वजनिक कोशिश की उसने और फनफनाई भी। कौन था, कौन थी, आजकल बहुत फोन। आभा हंसी, असावधानी के खोल में एक सावधान हंसी। तुम नहीं जानती मम्मा, तो जन्मा दो, बिना जन्माए कैसे जानूंगी। उसके लिए प्रतीक्षा करो अम्मा, द राइट टाइम कम्स, आभा ने दीपा की सनातनी चिंता पर कहा। विशेष नहीं, बस हल्के से कंधे उचका दिए। पहली बार एहसास हुआ महीन महीन अजनबीपन उग रहा है दोनों के बीच। बाहर बहती हवा में एकाएक तेजी आई। दौड़कर दीपा ने खिड़कियां बंद की, कहीं अंधड़ घर में न घुस जाए, पर देरी हो चुकी थी। दूसरे दिन आभा के फोन संवाद पर जब कान लगाया तो फिर गच्चा खा गई, फिर चक्कर आ गई। आज भाषा बहुत ऊंची और स्तरीय थी। कई शब्द विशेष रूप से कान में बादलों की तरह फटे। इंडिविजुअलिटी, आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी, तीनों ही ने मिलकर सुबह की टी का जायका ऐसा बिगाड़ा कि ठंडी लस्सी भी तरावट नहीं दे सकी। उसकी मुंडी फिर हिली, कानों के कुंडल फिर डोले। गड़बड़ तो कुछ जरूर है, हे भगवान, क्या मुंह दिखाएगी इसके जन्मदाताओं को। फोन, गुप्तगू, देर देर रात तक वापस लौटना और वापस निकलने की बेताबी का सिलसिला जब कई दिनों तक जारी रहा तो उसका शक पूरी तरह यकीन हो बदल गया कि हर दिन कुछ नए हिस्से उग रहे हैं। आभा के भीतर जहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, उसके पास रास्ता है। उसकी परम मित्र और कुलीग नलिनी ने सुझाया उसे। क्या, किसी दिशाहारी की तरह माथे पर हाथ धरते हुए पूछा दीपा ने। मामला कोनो प्राइवेट डिटेक्टिव के दिए था, दिए दा टका लागवे, किंतु क्लियर पिक्चर पेई जाबी। मामला किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को दे दो, पैसा तो लगेगा पर पिक्चर साफ हो जाएगी। बात जम गई दीपा को, स्थिति का सही विश्लेषण फिर एक्शन प्लान। उसी शाम कुली के साथ किसी ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी में गई वह, और डिटेक्टिव मिस्टर माथुर ने जब लेनिन मार्का अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए हंसते हुए कहा, मैडम हम तो पत्ती पत्ती डाल डाल, यहाँ तक कि बादल बादल पर नजर रखते हैं। आपकी छोकरी के बॉयफ्रेंड तो क्या उसके अंडरवियर के ब्रांड तक को सामने लाकर धर दूंगा। तो उसके आत्मविश्वास को देखकर सचमुच आश्वस्त हुई थी वह। और सप्ताह भर बाद ही तहखानों के राज सामने आ गए। मिस्टर माथुर ने अपनी रिपोर्ट उनके सामने लाकर धर दी थी। साफ लिखा था, घुघराले बाल, बेल सा लहराता कद और नारीत्व की हद तक सुंदर युवक शुभाशीष बनर्जी के साथ आभा को अक्सर कोलकाता के सांस्कृतिक केंद्रों, कभी नंदन, कभी मधुसूदन मंच, तो कभी ज्ञान मंच में डाब पीते और झाल मुड़ी खाते देखा जाता है। लगभग 35 वर्षीय शुभाशीष कला और रंग कर्म की दुनिया से भी जुड़ा है। अपने कलात्मक संस्पर्श से उसने कई स्ट्रीट बच्चों तक को कलाकार बना डाला है। इसके अतिरिक्त ए तोस एंड संस में टी टेस्टर है। सब कुछ अच्छा है, पर चिंताजनक पहलू यह है कि वह विवाहित है, एक 8 वर्षीय बच्चे का पिता है। पृष्ठ 66। हे भगवान, नसों में दौड़ता खून जैसे एकाएक जम गया, वहीं धम्म से बैठ गई वह। मिस्टर माथुर कहते जा रहे थे, आज का सारा युवा वर्ग ही असुरक्षा के बोझ तले डूबा, ऐसे वर्जित प्रेम इलाकों में डूब उतरा रहा है। इस दिशाहीन और आक्रामक होते समय की चाल ही ऐसी है कि युवा वर्ग के पास सिर्फ 3 स्वप्न ही रह गए हैं, सेक्स, सेंसेक्स और सक्सेस। क्या कीजिएगा। पर नहीं, उसने कुछ नहीं सुना। आंखों के आगे जैसे सब कुछ स्याह था, एक अंधेरे से दूसरे अंधेरे तक का सफर। वह फिर मात खा गई, कुलभूषण फिर जीत गया। 25 वर्ष पुराना आहत भाव आंखों में रेंग गया। अशांत मन चमगादड़ की तरह फड़फड़ाता रहा, हे भगवान, वह कवि यह रंगकर्मी, वह 2 बच्चियों का पिता या 1 बेटे का। क्या किन्हीं अदृश्य हाथों ने उसकी किताब का तीसरा पृष्ठ काटकर इसकी किताब में चिपका दिया। क्या ऊपर वाला भी कट पेस्ट करने लगा। गजब, आभा की जिंदगी भी उसी का दूसरा संस्करण निकली। उस तूफान को तो झेल गई, पर क्या इस मार को झेल पाएगी वह। खुदाया, इतनी सावधानी के बावजूद धीमी धीमी आंच पर सीज गई नादान कहानी और उसे इल्म तक न हुआ। रात, वक्ष में कुशन दबाए और सामने झूलती लटों को पीछे धकेलते हुए आभा ने सहज स्वाभाविक भाव से ग्लोब डिटेक्टिव की सच्चाई को कबूला। बोलते बोलते कई बार उसकी आंखों से तरल वेदना सी झलकी। माँ को समझाना भी चाहा, अम्मा जिंदगी का बोझ जब संभाले नहीं संभलता तो नैतिकता अनैतिकता की दुहाई बेमानी है। दम घुटती सांस यह नहीं देखती कि हवा का झोंका किस रोशनदान से आ रहा है, उसे तो बस हवा चाहिए, ताजी हवा। प्यास यह नहीं देखती कि जल का स्रोत क्या है। बस समझ लो अम्मा की मेरे साथ भी यही है, जिंदगी से इतना भर ही चाहती हूँ मैं। फिर तुम तो खुद भुक्त होगी हो अम्मा। दीपा की रीढ़ में कंपन हुआ, बोलना चाहा तो जुबान जैसे एकाएक लॉक हो गई। भुक्त भोगी, शब्द सीने में खंजर की तरह गड़ा, आंखों के भीतर ही आंखों से कुछ पल तक घूरती रही वह आभा को। आज इतिहास की उसी बिंदु पर खड़ी थी वह जहां कभी उसकी माँ खड़ी थी। कई आसमानों को पार कर आई आवाज और टकराने लगी उसके कानों से। भरी खाट वाले विवाहित प्रेमी को सांप समझो बेटी, एक समय जब इस प्रेम की केचुल उतर जाएगी तब न वह सम्मोहन बचेगा और न ही वह सौंदर्य, बचा रहेगा सिर्फ दंश। देखना जिसके लिए तुम आज सब कुछ हो, एक समय आएगा जब तुम रद्द किए माल सी कुछ नहीं रहोगी उसके लिए। लगभग यही शब्द थे जिनके सहारे माँ ने चेताया था उसे। गजब, 28 सालों बाद भी शब्दों ने अपनी चमक नहीं खोई, उतने ही प्रासंगिक, जीवित और जिंदा थे। छोटा सा नुकीला मौन, कुछ बोझिल पल। अम्मा इट्स माई लाइफ, और यह भी जान लो अम्मा कि खोने का लुत्फ पाने से कम नहीं। जितना वह बोली उससे कहीं ज्यादा उन आंखों का नुकीला कोड़ बोला था, चेहरे के भाव बोले थे, भीजे हुए जबड़े बोले थे। उसकी नजरें इतिहास के चेहरे से फिसलती हुई आभा की आंखों पर ठिठक गईं। वैसी ही एक जोड़ी आंखें, प्रेम का वही गुलाबी खुमार, हसरतों के वे खरगोशी रोएं, प्रतिरोध का वही नुकीला चाकू था वहां जो वर्षों पूर्व उसकी आंखों में लहराया था। सर्दियों की भोर सी सिकुड़ गई वह काली काली मेघमालाओं को खाली खाली आंखों से देखती रही वह, और सुनती रही एक निःशब्द शोक गीत को जो रफ्ता रफ्ता फैल गया था चारों ओर। उसने एक दीर्घ उच्छ्वास लिया, ढीले पड़ते चेहरे पर पीड़ा की नीली लकीरें गहराई। क्या कभी समझ पाएंगे कि क्या पाना चाहते हैं हम, कब तक चलेगा यह सिलसिला फना होने का, टूटे हुए पंखों, अधबने नीड़ों और अधूरे इतिहास का। ओफ, कितना चाहा था उसने कि वह आभा बने, पर वह तो उसकी ही बेटी निकली।